प्रकृति के बाह्य गुणों से अनुजुगम विभिन्न कल्पों के अनुसार विगृहत धारण करके देहा शरीर ते वे ब्रह्मा विष्णु भगवान विष्णु गिरीशः शिवजी प्रणतः झुका नमित अस्मि हूँ अहम मैं वा आप सबको तेभ्य इनमें से का कौन एवा निश्चय ही भवताम आपका मैं मुझसे इह यहां उपहूत बुलाया जाकर। श्लोक संख्या अत्रि मुनि ने कहा हे ब्रह्मा हे विष्णु तथा हे शिव आपने तीनों गुणों को स्वीकार करके अपने को तीन शरीर में विभक्त कर लिया है जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने आप में से किसको बुलाया था। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ ना। एक जमाना था कि भक्त लोग क्लास में नोटबुक लेकर भाग कर आते थे आगे बैठने के लिए, और लगता है मॉडर्न एज ऐसा हो गया कि सब पीछे बैठते हैं, पता नहीं आगे कोई नहीं रह जाएगा। सब आगे आ जाओ। कुछ लोग पिलर के पीछे बैठे हैं। अरे ऐसा संकर ताकि तुम देख सकूं। वो नित्यानंद आगे आ जाओ। इतना सुनते नहीं हो क्या, बंगला बोलूं? और कौन पीछे है? वो चश्मा वाला कौन डिवोटी है, लाल कपड़ा वाला कौन भाषा समझता है वो? श्लोक 25 और 26। कृपा बलोकेन हसदेन उपलब्धिताम तदरोचिता प्रतिहते निमिल्य मुनिरक्षिणी। अत्रि मुनि यह देखकर परम पुलकित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने उस समय अपने आंखें मुंद ली। चेतः तत् प्रवणम जुंजनः तावि संहतांजलि स्वलक्षणया सुक्तया वाचा सरलोक गरीयसः। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः जिस तीस प्रकार उन्होंने होश संभाला और हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख देवों की मधुर शब्दों से प्रार्थना की। अत्रि मुनि ने कहा हे ब्रह्मा हे विष्णु तथा हे शिव आपने तीनों गुणों को स्वीकार करके अपने को तीन शरीरों में विभक्त कर लिया है जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए आया करते हैं मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और जानना चाहता हूं कि मैंने आप में से किसको बुलाया था। तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की। अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आह्वान किया था। भगवान सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहे होंगे, अन्यथा वे इसके स्वामी कैसे बनते। यदि कोई भवन का निर्माण कराता है तो इससे सूचित होता है कि वह उस भवन निर्माण से पहले विद्यमान है। फलतः ब्रह्मांड के स्रष्टा परमेश्वर को त्रिगुणातीत होना चाहिए, किंतु यह ज्ञात है कि विष्णु सत्गुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के अध्यक्ष हैं। अतः अत्रि मुनि ने कहा, वह जगदीश्वर अवश्य ही आप में से ही कोई है, किंतु आप तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं। अतः मैं यह नहीं पहचान पा रहा कि मैंने किसका आह्वान किया था। कृपया मुझे बताएं कि आप में से कौन ईश्वर है। वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकते। उनका यह प्रश्न कि उन्होंने किसे बुलाया था, यह सूचित करता है कि वे भगवान के वैधानिक स्थिति के विषय में संशय पूर्ण थे। अतः उन्होंने तीनों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बताएं कि ब्रह्मांड का दिव्य स्वामी कौन है। निस्संदेह उनका विश्वास था कि सभी भगवान नहीं हो सकते, बल्कि इन तीनों में से एक ही जगदीश्वर हो सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषुपुरुष। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलं कृषिष्ठम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज, जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ब्रह्म वैवत पुराण में एक कथा आता है, कि एक बार भगवान नारद घूमते घूमते बैकुंठ कैलाश और सत्य लोक का यात्रा कर रहे थे। जैसा कि आप लोग सुन चुके होंगे कि नारद का एक ही काम है और वह काम है कि लोगों को भगवान को देना, भगवान से संबंध करा देना, ये नारद जी का काम है। और इसी को लोग समझते नहीं हैं तो बाहर के लोग कहते हैं कि ये नारद जी आ गए हैं, इन नारदगिरी कर रहे हैं, मतलब कि झगड़ा लगा रहे हैं। वास्तव में नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं, उसको चर्निंग करते हैं। जैसे दही को चर्न किया जाए तो मक्खन निकलता है, तो नारद जी किसी परिस्थिति को चर्न करते हैं। तो गए लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी का सेवा देखे, भगवान विष्णु के प्रति कितना अच्छा तरह से सेवा कर रही है, क्षीर सागर में भगवान शयन किए हैं। और लक्ष्मी जी अपने सुंदर सुंदर सुकुमार कमलों से, कर कमलों से भगवान का पाद संवाहन कर रही है, पैर दबा रही है। अब इसी भाव को देख करके ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं ना, ब्रह्मा कुमारी वाले एक बार घाट के ऊपर में हम लोगों को एक हॉस्पिटल में स्ट्राइक हो गया, सर्वोदय हॉस्पिटल में, तो कांति भाई पटेल ने हम लोगों को दे दिया, चलो हरे कृष्ण वाले को देते हैं। तो हम लोग गया उधर, खूब सफाई किया, डॉक्टरों ने देखा अब तो हरे कृष्ण वालों का हो जाएगा, सब स्ट्राइक टूट गया, सब डॉक्टर आ गए फिर से। एनीवे, तो वहां पर एक प्रोग्राम था और ये ब्रह्मा कुमारी वाले दो तीन माता जी लोग आए थे, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे गुरु जी, आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी में मोस्टली स्त्रियां हैं, क्योंकि कहा कि हमारे गुरु जी ने यह देखा कि किस प्रकार से पुरुष लोग स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, इसीलिए उन्होंने विष्णु का भक्ति छोड़ दिया। वो स्त्रियों के अत्याचार के विरुद्ध में, उसी का नया रूपांतर हो गया आजकल वुमेन लिबरेशन, उसी का नया रूपांतर है। तो मैं कहा अच्छा विष्णु ने क्या अत्याचार किया लक्ष्मी पर, तो कह रहे देख नहीं रहे हो, आप देखते नहीं हो फोटो, अच्छा वो फोटो भी रखे थे वहां पर अपने आश्रम में, वो उनका सिद्धांत था। क्या अत्याचार है कि लक्ष्मी जी विष्णु का पैर दबा रही है, तो स्त्रियों पर अत्याचार है कि पुरुष लोग स्त्रियों से पैर दबवाते हैं, अत्याचार है। मैं कहा तो ये आपको तकलीफ क्या है, यदि यदि लक्ष्मी जी को आनंद आ रहा है अपने पति का सेवा करने में तो आपको तकलीफ क्या है, क्या लक्ष्मी जी सुदर्शन, अब क्या भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र लेकर के लक्ष्मी जी गले पर खड़े थे क्या कि मेरा पैर दबाओ नहीं तो काट डालूंगा, ऐसा किए थे क्या? अरे उनको यदि आनंद हो रहा है तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारा गुरु और तुम दोनों नरक के वासी हो गए विष्णु का भजन छोड़ करके, ये क्या बकवास है। एनीवे, नारद जी भी इस भाव को देखे तो उनमें बड़ी भक्ति जाग गई। एक तथा कथित ओमन लिबरेशन वाला देखा तो उसमें भगवान के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, और नारद जी देखे तो उनमें भक्ति जाग उठी और नारद जी के आहा लक्ष्मी जी क्या सेवा प्रभु का करती हैं। वास्तव में आप भगवान की बड़ी प्रीतमा है, भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। लेकिन अभी मैं घूम घाम करके आ रहा हूं पृथ्वी लोक से, मैं देखा एक स्त्री है, बड़ी सती है, आपसे कहीं बहुत ऊंचा है, उसका पद बहुत ऊंचा है। तो नारद जी कहने का सवाल, एक ही बात को यदि कहा जाए और थोड़ा विराम देकर कहा जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे कहते हैं कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, बातें कहीं है लेकिन उनका तीन अर्थ हो जाएगा। और कॉमा दे दिया है तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कुछ भी हो सकता है। एनीवे आप ये सब जानते हैं। तो नारद जी को कहने का तरीका अलग अलग था। तो ऐसे कहे मानो हे लक्ष्मी जी आप तो उस सती के चरण के धूलि के समान भी नहीं है। नारद जी देखना चाहते थे कि भगवान अब आए लोगों के कल्याण के लिए, शिक्षा देने के लिए। देखिए जिस व्यक्ति में कमी महसूस होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें द्वेष पहले उत्पन्न होता है। जिसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वह बड़ा आनंदित होगा, उसमें द्वेष नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नारद जी उत्पन्न करा दिए कि वो मुझसे बड़ी है, तो स्वाभाविक है कि कौन व्यक्ति है, वो कौन स्त्री है। तो नारद जी कहे कि अत्रि की धर्म पत्नी अनुसुईया, अनुसुईया जी है। अब नारद जी कह करके वहां से सत्यलोक आए माता सरस्वती के पास। माता सरस्वती से भी कहे कि माता आप बीणा पाणी हैं, हमारी माता हैं, आप पिताजी का खूब सेवा करती हैं, देखा लक्ष्मी जी भी आपके ही समान खूब सेवा करती हैं, लेकिन अत्रि के समान, अत्रि की पत्नी अनुसुईया के समान कोई सेवा नहीं करता है। सतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं अनुसुईया। आज के जमाने में पूरे ब्रह्मांड में सतियों में इस सृष्टि में सतियों में श्रेष्ठ है अनुसुईया। अब उनको भी आग लग गया उनके हृदय में। नारद जी काम बनाते हुए चल दिए कैलाश पर। कैलाश पर आकर के पार्वती जी का खूब गुणगान किए कि वास्तव में सती आप हैं, जैसा पति रहता है वैसा आप भी रहती हो। इस बट वृक्ष के नीचे दोनों रहते हो, न घर है न द्वार है, कुछ भी नहीं है, पति के सेवा में लगी रहती हो, लेकिन अनुसुईया धन्य है, सबसे सती तो वह है, उसके समान मैं कोई सती देखा नहीं हूं। अब नारद जी कहकर चल दिए। अब ये तीनों गोतनी लोग हैं, हमारे यहां गोतनी कहते हैं, तीन भाई की तीन पत्नी। एनीवे ये तीनों लोग संजय सलाह करने लगे। अब इन्होंने ठान लिया कि देखना है कि वो सती कैसी है, देखना है कि सती कैसी है। तो सब लोग अपने पति से यह पता लगाने के लिए दबाव डाला कि अनुसुईया सती कैसे हो सकती है, यानी आप लोगों को उसका सत भंग करना है। तो पत्नी के लिए पति को करना ही पड़ता है, सबको पत्नी का बात मानना पड़ता है, कोई संसार में ऐसा नहीं है जो पत्नी का बात नहीं मानता। तो तीनों महात्मा आए, भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी, तीनों आए सती अनुसुईया के यहां। और सती अनुसुईया के हाथ से वो भोजन करना चाहते थे, लेकिन शर्त एक रख दिए। भोजन ही था ना जी, भोजन ही था ना, मैं बहुत पहले पढ़ा था। शर्त रख दिए कि आपको नंगा होकर के हम लोगों को भोजन कराना पड़ेगा। तो देखिए पहले आजकल को कोई ऐसा आ जाए और कहे कि आप नंगा अगर हम खिलाओ तो हम तुरंत पुलिस को बुलाएंगे, नहीं तो पति को बुलाकर तो डंडा, और नहीं तो स्त्रियां झाड़ू लगाकर डंडा मारकर भगा दिए घर से। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा बात नहीं था। अतिथि देवो भव, अतिथि जब आ जाता है तो उसके इच्छा को पूरा करना आतिथ्य का धर्म हो जाता है। सीता जी भी लक्ष्मण रेखा पार कर गई अतिथि सेवा के लिए ही। तनसुईया जी सोची कि वो समझ गई कि कारण क्या है। तनसुईया जी वास्तव में सती थी और महान थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने सतीत्व के बल से इन लोगों को छोटा बालक बना दिया। छोटा बालक 5 साल से 3 साल का बालक बना दिया। और छोटे बालक के सामने मां नंगी हो तो बड़ा बात क्या है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब इस प्रकार से सती अनुसुईया और अत्रि ऋषि इन लोगों का भरण पोषण करने लगे। इन लोगों में आसक्ति हो गई अत्रि और अनुसुईया की। बहुत दिन हो गए, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जब नहीं लौटे तो इन तीन महारानियों को थोड़ा चिंता हुआ। तो वो लोग देखने के लिए आई कि क्या हो गया हमारे प्रभु लोगों को। तो आई तो देख रही प्रभु तो है ही नहीं, ये तो तीन बालक वहां खेल रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हो गया इन लोगों को। और उन लोगों ने माता सती अनुसुईया से प्रार्थना की और अब उनके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं रह चुका था, अपना गलती स्वीकार कर ली कि हम लोगों को द्वेष हो गया था, इसी चलते हम लोगों ने ऐसा किया। हे माता, आप तो स्त्री हैं, स्त्री के दुख को समझ सकती हैं कि पति के बिना स्त्री का जीवन कैसा होता है, इसलिए आप कृपा करके हमारे पतियों को इससे मुक्त कर दीजिए। सती अनुसुईया ने कहा कि ठीक है, आप लोग भी सती हो तो अपने अपने पति को स्वीकार लो। बड़ा धर्म संकट हो गया, ये तीनों बालक एक समान थे, कहीं लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को पकड़ लेगी और पार्वती जी कहीं विष्णु को पकड़ लेगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एनीवे अनुनय विनय की तो माता सती अनुसुईया उन लोगों को उनके रूप में दे दिया। इस बात को प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में जब अवतारों का वर्णन है, दत्तात्रेय के अवतार के परपट में प्रभुपाद जी ये कहानी बतलाए हैं ब्रह्मवैवत पुराण से। जब भगवान विष्णु जा रहे थे, भगवान शिव जा रहे थे, ब्रह्मा जी जा रहे थे, तो अत्रि ऋषि और अनुसुईया के भाव को समझ गए और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा पूरी होगी। और ब्रह्मा जी भी बाद में कहे कि पुत्र आप लोग सृष्टि करो। तो इस प्रकार से 1000 साल तक अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया तपस्या किए, एक पैर पर खड़ा होकर के 1000 साल तक तपस्या किए। और वे मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, वह है शरणम तम प्रपद्येहम य एष जगदीश्वरः प्रयाम आत्मा समा मह्यम प्रयक्षात्वे चिंतयन। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूं, वो प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। पुत्र इच्छा से यह कर रहे थे। अब इस प्रकार से उन लोगों के तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के और आए। भगवान को देख करके अत्रि मुनि सष्टांग दंडवत प्रणाम किए। उसके बाद अपना ये प्रश्न शुरू किए। अत्रि उवाच, अब थोड़ा ये जानना जरूरी है कि अत्रि ऋषि हैं कौन। जब अत्रि ऋषि कुछ बोल रहे हैं तो उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बात बताए हैं जो बड़ा छिपा हुआ बात है। वह यह बात है, वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकते। इसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अत्रि जैसे महान ऋषि को भी संदेह हो गया था भगवान के संबंध में। अत्रि कौन हैं, इनके संबंध में ये जानना जरूरी है। भागवतम के तृतीय स्कंद प्रथम भाग में आप देखे होंगे एक चित्र, ब्रह्मा जी का चित्र है और अलग अलग लोग निकले हुए हैं। उनके आंख से कोई निकला है, उनके भ्रुकुटी से कोई निकला है, उनके लाठ से कोई निकला है, उनके हाथ से कोई निकला है, उनके बक्षस्थल से कोई निकला है, उनके उरु प्रदेश से कोई निकला हुआ है, इस प्रकार से। तो ये 10 लोग उत्पन्न हुए थे, 10 ऋषि लोग। मरीचा अत्रि अंगिरसौ पुलस्त्या पुलह क्रतु भृगो वशिष्ठो दक्षस्थ दशम तत्र नारद। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह कर्तु भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद, ये 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। 10 में से जो 9 लोग हैं वो ब्रह्मा के समान है। विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है, नव ब्रह्मणा इति एते पुराणी निश्चित गता। पुराणों में वर्णन किया गया है 10 में से 9 लोग ब्रह्मा के समान हैं, यानी प्रजापति हैं, बाल बच्चा उत्पन्न करने वाले, और एक नहीं है, वो है नारद जी, बाल ब्रह्मचारी हैं। तो 9 लोग प्रजापति हैं, तो प्रजापतियों में इन लोगों का नाम आता है। और ये 9 लोग कोई समान नहीं हैं, ये भगवान के अंश हैं, ये भगवान के कला हैं। हम लोग भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान के कला हैं। ऋषयो मनवो देवा मनु पुत्र महोजसा कला सर्वे हरेर एव श्रया स प्रजापतय तथा महौजसा। ये सब शक्तिशाली कला हैं। कौन कौन? ऋषयो सप्त ऋषि लोग, मनवो मनु, देवा अन्य देवतागण, मनु पुत्रा मनु के पुत्रगण, कला सर्वे हरेर एव, एव मतलब निश्चित ही, निश्चित ही हरि के कला हैं। और एक जो है वो है प्रजापति दक्ष। तो ये सब लोग भगवान के ही अंश हैं। इनमें से जो 7 हुए हैं ये महान ऋषि हैं, ये हमेशा रहते हैं, प्रत्येक मनवंतरों में ये ऋषि रहते हैं, 7 ऋषि। और ये 7 ऋषि जो हैं उसमें से मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, ये 7 हमेशा रहते हैं। और कर्तु, दक्ष और नारद, ये बदलते रहते हैं। इन 7 का स्थान भी है आकाश में, सप्त ऋषि हैं, सप्त तारागण कहते हैं, ये हमेशा रहते हैं। इन लोगों का अपना लोक है जिसे सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। ये वहां पर क्या करते हैं रह करके, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में किया गया है। ये कहां रहते हैं, ये सप्त तारागण कहां रहते हैं और करते क्या हैं? कहा गया है कि 9 ग्रहों के ऊपर 11,00,000 योजन की दूरी पर ये स्थित हैं। 9 ग्रहों से 11,00,000 योजन की दूरी पर ऊपर ये स्थित हैं। इनका काम है लोगों के मंगल कामना, समान लोगों के लिए मंगल कामना। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी वे हैं। और प्रलय के बाद सृष्टि का जो बीज होता है, जिससे सृष्टि होता है, ये ऋषि लोग अपने पास रखते हैं। भागवतम के नौवें स्कंद में महाराज सत्यव्रत की कथा आती है, भगवान के मत्स्य अवतार का कथा आता है कि किस प्रकार से महाराज सत्यव्रत जब उस मछली को लिए जो बहुत बड़ी बन गई, बड़े स्थान में रखे और बड़ी बन गई और बड़ी बन गई और बड़ी बन गई, समुद्र में रखने के लिए गए और वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया कि आप कौन हैं, आप लोग अपना मोबाइल बंद कर लीजिए कम से कम, इतना तो कीजिए, इतना कष्ट कीजिए, कथा सुनना तो ऑलरेडी कष्ट है कलयुग में। तो उस समय भगवान आए और बतलाए कि वे कौन हैं और कहे कि प्रलय समुद्र में मैं आऊंगा और सप्त ऋषियों के साथ में आप सृष्टि के बीज वेद इत्यादि को लेकर के उस नौका पर आए। नमस्कार इसको पढ़ सकते हैं। ते सप्त ऋषि लोग हमेशा रहते हैं, इनके नाम बदलते रहते हैं, ये पोस्ट एक ही है। जैसे ब्रह्मा का पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट यहां पर है, तो ब्रह्मा का पोस्ट है, सप्त ऋषियों का पोस्ट है। और ये जो सप्त ऋषि थे जिसमें अत्रि जी आते हैं, वे अत्रि जी सृष्टि के प्रारंभ में स्वाम्भुए मनवंतर में भी थे, 14वें मनवंतर में ये ऋषि लोग रहते हैं। तो अब तक से 6 मनवंतर बीत चुका है और 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन बता सकता है ये मनवंतर का नाम क्या है? हाँ, एवं विवस्वती युगम प्रोक्तवान एवं भयम, ये वैवस्वत मनवंतर है, यहां विवस्वत मनु है। और इस मनवंतर में भी अत्रिधि हैं। देखिए, बिगनिंग में भी अत्रिधि थे और अभी भी हैं। अभी कौन कौन सात ऋषि लोग हैं उनका नाम इस प्रकार से है, कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतम जमदाग्नि जवदाग्नि वशिष्ठम स अरुंधत्या सहाष्टका। यहां पर आठ लोगों का, सह अष्टका, आठ लोगों का। प्रश्न उठ सकता है, अरे सात लोग तरसी अपने बताया, आठवां कैसे हो गया? कश्यप मुनि, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि परशुराम जी, सॉरी जमदाग्नि, वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, ये आठ लोग हैं। अरुंधति जी बड़ी सती हैं, सतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और लोक कल्याण के लिए वे हमेशा वशिष्ठ जी के साथ ही रहती है। और सब ऋषि लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए उनको भी स्थान दे दिया गया है। इन ऋषियों का जो 10 लोगों का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के अलग अलग शरीर के विभाग से, जिसका वर्णन भागवतम के तीसरे स्कंद में किया गया है, मन से मरीचिदि उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि मुनि उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा जी हुए, इसलिए वेद को उन्हें दिया गया, उनके कानों से पुलस्त मुनि की उत्पत्ति हुई, उनके नाभि से पुलह ऋषि, उनके हाथ से कर्तु, इसीलिए जग में आहुति दी जाती है ना हाथ से कर्तु, उनके त्वचा से भृगु, उनके प्राण से वशिष्ठ, उनके अंगूठा से दक्ष प्रजापति और उनके हृदय से नारद जी निकले। नारद जी हृदय से निकले हैं, तो भगवान के हृदय के बात को नारद जी जानते हैं। तो इस प्रकार से इन ऋषियों का उत्पत्ति हुआ। तो उसी में से अत्रि मुनि हैं जिनका जन्म हुआ है भगवान के आंखों से, भगवान के आंख से जन्म हुआ अत्रि मुनि का। और वे अत्रि मुनि, सॉरी ब्रह्मा जी की आंख से, ये अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के आंख हैं, कोई ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान के कला हैं, फिर भी ये इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं जिस प्रकार से अर्जुन प्रश्न किए थे हम लोगों के कल्याण के लिए, वैसे ही मानव कल्याण के लिए अत्रि मुनि बड़ा सुंदर ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोग आ गए, जगत ईश्वर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जगत का मतलब यह संसार, जगदीश्वर का दो अर्थ होता है, यहां पर इस जगत का मतलब हुआ इस भौतिक संसार का, क्योंकि भौतिक संसार में सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी आदेश दिए थे अत्रि मुनि को कि आप प्रजापति हो आप सृष्टि करो, ब्रह्मा जी सबको यही बोले, वो नहीं बोले कि नसबंदी करा लो हम दो हमारे दो है? बाप मां को भी भूल जाओ, आजकल स्लोगन हो गया हम दो हमारे दो, भैया बाप मां कहां चले गए, उनका कोई खबरें नहीं है, इसीलिए बाप मां कोई सेवा नहीं करता है, हम दो हमारे दो में लगे हुए, लेकिन ब्रह्मा जी कहे नहीं सृष्टि करो सृष्टि करो। तो जगदीश्वर का मतलब यहां पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये तीनों जगदीश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, भगवान विष्णु ही तीन रूप में उनकी ही कलाएं हैं सृष्टि के लिए रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी के रूप में, पालन करने के लिए स्वयं शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में और संहार करने के लिए भगवान शिव के रूप में यहां पर हैं, लेकिन ये तीनों हैं जगदीश्वर, ये जगत के इस भौतिक संसार के, लेकिन असली जगदीश्वर हैं वे हैं जगन्नाथ, वे हैं कृष्ण। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जगदीश्वर कौन है, इस बात को ये तीनों जगदीश्वर बतलाए हैं कि हम ही लोग जगदीश्वर हैं, चिंता मत कीजिए, वो नहीं बताए कि विष्णु जगदीश्वर हैं, ये तीनों लोग आगे श्लोक में आप लोग सुनेंगे। प्रजापति अत्रि यहां पर पूछ रहे हैं, कहते हैं विश्व उद्भव स्थिति लयेषु, तो जगदीश्वर किसके लिए, विश्व, इस विश्व का, इस विश्व में क्या क्या बात है, कहते हैं उद्भव मतलब सृष्टि, स्थिति मतलब पालन, और लयेषु संहार, इस तीनों में विभज्यमान ही आप बटे हुए हैं, माया गुणेर अनुजुगम, माया अगुणेर अनुजुगम, यहां प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकते, यानी माया के रचना ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं है। हालांकि भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्टताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यहां पर भी बात आया हुआ है माया गुणय अनुजुगः, बार बार भगवान आते हैं लेकिन हैं कैसे, माया अगुणई, माया के गुण से परे हैं, यानी सत्गुण रजोगुण और तमोगुण के ये प्रधान हैं लेकिन इसमें फंसते नहीं हैं। और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिए हैं तात्पर्य में कि जैसे कोई व्यक्ति का घर बनाता है, ये उदाहरण दे प्रभुपाद जी ना, कोई व्यक्ति घर बनाता है, पुनः पढ़ता हूं, अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आवाहन किया था, भगवान सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहे होंगे अन्यथा वे इसके स्वामी कैसे बनते, यदि कोई भवन का निर्माण कराता है तो इसे सूचित होता है कि वह व्यक्ति उस भवन निर्माण से पहले विद्यमान था। है? यदि भवन निर्माण से पहले नहीं तो भवन का निर्माण कैसे कराएगा? तो यदि ये माया के द्वारा सृष्टित हो जाते तो सृष्टि के रचयिता कैसे होते? यह प्रमाणित करता है कि ए सृष्टि से पूर्व में थे, यानी इस भौतिक सृष्टि के पूर्व में थे। इस बात पर विचार किया जा सकता है कि कब इन लोगों की उत्पत्ति हुई। इसका भी वर्णन भागवतम के चौथा स्कंद के आगे के श्लोकों में बतलाया गया है। भगवान क्षीरोदक साई विष्णु की स्थिति पहले है, पहले आए संकर्षण देव, उसके बाद ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए भगवान शिव, जो कि न तो जीव हैं और न भगवान, और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, उसके बाद में भगवान कारणोदक साई विष्णु महातत्व को हैंड ओवर किए। किसको? ब्रह्मा जी को, जो कि इस विश्व के आर्किटेक्ट हैं, है ना। वे ब्लूप्रिंट दिए और महातत्व को, और इसको बनाया कौन? ये सब अलग अलग प्रजापति लोग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यह सेमिनल क्रिएशन है, बीज से जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वह ब्रह्मा से उत्पन्न हुई, उनके पहले नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों माया से ऊपर हैं। और भगवान के संबंध में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया द्रोत्या, ये मेरी माया है, मैं इसका निर्माण किया हूं, माया अध्यक्षेण प्रकृति सुवते चराचरम, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है माया। तो इस प्रकार से यहां पर सिद्धांत है, समझना चाहिए, माया अगुणैर अनुजुगम, अनुजुगम मतलब बार बार, मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम भगवान आते हैं। जैसा भगवान कहते हैं संभवामि जुगे जुगे, आता हूं, तो भगवान आते हैं और कहते हैं बी गृहित देहा, ये भी सार गर्भित है। बी गृहित के दो अर्थ है, एक अर्थ है उनका जो शरीर है ब्रह्मा और विष्णु महेश का, ये माया गुणातीत है, माया के वस्तु यानी जो अष्ट प्रधान तत्व है भूमिरा अपनलो वायु खम मनो बुद्धि एवं च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति सदा, ये प्रकृति के आठ तत्व हैं, इससे नहीं बना हुआ है और सतगुण रजोगुण और तमोगुण में नहीं है, इसीलिए इसे कहा गया इन लोगों को बी गृहित देहा। इस देह का जो निर्माण हुआ है इसमें आठ तत्व नहीं लगे हैं। प्रश्न उठ सकता है कि ब्रह्मा जी का शरीर कैसा होगा, शिव जी का शरीर कैसा होगा, क्या हम लोगों के समान होगा, आठ वस्तुओं से बना होगा? तो भागवतम कहता है विगृहित देहा, इन वस्तुओं से नहीं बना हुआ है, ब्रह्मा जी जीव होने के बावजूद भी इन वस्तुओं से नहीं बना हुआ है। और दूसरा बात कि वे प्रकृति के तीनों गुणों में नहीं फंसता है, हम लोगों का जो देह है प्रकृति के तीन गुण चला रही है, है? वो है ना, इसी में है कि कहां पर है, गीता में भी है भागवतों में भी है, प्रकृति के तीन और रस्सी के द्वारा माया देवी उंगली से ऐसा कर रही है ना, हाँ ये है ना, देख रहे हैं ना, ये जीव के लिए है, ये भगवान के लिए नहीं है, ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, ये लोग डायरेक्टली भगवान के सुरक्षता में है। कभी कभी मोहित हो जाते हैं लोग भी, लेकिन भगवान उन्हों का रक्षा करते हैं, क्योंकि उनके संरक्षण वे हैं, माया देवी नहीं है। नहीं तो यदि माया देवी इनकी होती तो मोहित होना मतलब भगवान को भूलना और कुछ नहीं। एनीवे चलिए उधर हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से इन तीनों के पोजीशन को क्लियर किए कि आप ये भी वही बात कर रहे हैं कि आप लोग जगदीश्वरे हैं, लेकिन असली जगदीश्वर कौन है? तीनों कंट्रोलर हैं। और आपका नाम क्या है? ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा। आप लोग प्रायः ब्रह्मा विष्णु और महेश कहलाते हैं। हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं तीनों को। प्रणतो अस्मि, हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरा प्रश्न अभी भी वैसे ही है। इसलिए उन लोगों से ये भी एक बात हम लोगों को सीखने को मिलता है यहां पर, और सीखना चाहिए कि भक्तों को फ्रैंक होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं है तो पूछ लेना चाहिए। ये नहीं कि लज्जा बस चुप जवारे के मुड़ी गाड़े रहे। अब तीन भक्त लोग आ गए तो कौन क्या है, सेवा करने में थोड़ा इजी होगा जान करके, तो पूछ लेना चाहिए। तो यहां पर अत्री जी पूछ रहे हैं कि तेभ्य क एव भवताम म इह उपहूतः। अरे जिनको मैं बुलाया था, जिस जगदीश्वर को, आप तीन लोग आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन आप कृपा करके बतलाइए कि आप तीनों में से जगदीश्वर कौन है, वो जगदीश्वर कौन है। तब इस बात को एक साथ में तीनों बोलते हैं, आपका प्रश्न बड़ा सही है लेकिन हम तीनों जगदीश्वर हैं, जगत के ईश्वर हम तीनों हैं। यह आगे के श्लोक में बताया जाएगा। मैंने तो भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य को मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहां पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहां कैसे हैं, क्योंकि इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूं। अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों देव हंसे और मृदु वचनों में इस प्रकार बोले, देवा उचु, तीनों बोले। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चय कर रखा है वही होगा, उसके विपरीत नहीं हो सकता। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है, और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए, यानी हम तीनों जगदीश्वर हैं। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अनुसरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे जस का संसार भर में विस्तार करेंगे। इस प्रकार उस जुगल के देखते देखते ही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तामहेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से उजल हो गए। तत्पश्चात क्रमशः भगवान विष्णु से दत्तात्रेय, जो कि अलर्क प्रहलाद इत्यादि को उपदेश दिए, अवधूत का रूप धारण किए, 24 उनके गुरु थे, और गुरुओं में शिरोमणि हैं भगवान दत्तात्रेय। गुरु कहा जाता है, दत्तात्रेय को गुरु कहा जाता है। तो ये दत्तात्रेय हुए, ब्रह्मा जी से चंद्रमा हुए, और भगवान शिव से गुस्सा वाले मुनि दुर्वासा जी हुए। दत्तो मयाम अहम इति भगवान सदत्त। भगवान ने कहा मैं अपने को दे देता हूं, इसलिए उनका नाम पड़ा दत्त। तो इस प्रकार से उनके शंका को समाधान हुआ। मैं श्रोता देख के आप लोग संडे आए हैं तो समझ लीजिएगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। मोटा मोटी अत्रि मुनि हमारे हम लोगों के रूप में शंका को समाधान करना चाहते हैं कि हम भगवान को पुत्र रूप में चाहते थे, आप तीन आ गए, तो अब मैं जगदीश्वर कौन है? हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोगों का शरीर भौतिक शरीर नहीं है और आप प्रकृति के गुण से परे हैं, क्योंकि आप प्रकृति के अधिष्ठाता हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी, तमोगुण के भगवान शिव और सतगुण के विष्णु। आप तीनों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं जगदीश्वर कौन है। और इसके उत्तर में बताए हैं कि हम तीनों ही जगदीश्वर हैं और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीर राघव गोस्वामी कहते हैं उसको संधि को विच्छेद किए माया मय अगुणे, माया के गुण से परे। क्या
जो दिया हुआ गुने,
हाँ
गुने बारह गुण,
यहां पर प्रकृति के तीन गुणों को, गुणा ही बहुवचन हो गया है, सत्गुण रजोगुण और तमोगुण, यहां पर बताया कि माया गुण से ये परे हैं, तीनों गुणों से, माया माया गुणई प्रकृति के बाह्य गुणों से, यानी सत्गुण रजोगुण और तमोगुण इसे परे हैं। वही बात हुआ, माया अगुणई और माया गुणई दोनों एक ही है। बोलिए बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा कि आपने दो प्रकार से अवतार की, एक तो ब्रह्म वैवत्स पुराण की कथा जो जिसमें कि अनुसुईया जी के लिए भगवान अवतरित हुए तीन रूपों में, और यहाँ अत्रि ऋषि जी की तपस्या से अवतरित हुए, तो दो विभिन्न समयों की बात है कि एक ही समय की बात है?
एक ही समय की बात है।
तो यहाँ तो
उस समय नहीं, नहीं उस समय उनके भाव को कहकर वो चले गए, उस समय अवतार नहीं हुआ
जिस समय आए थे सती जी, सती के,
हाँ उस समय
परीक्षा के लिए, परीक्षा
हाँ, उस समय पुत्र के रूप में नहीं है,
हाँ, तब चले गए,
वो चले गए बाद में लोग तपस्या किए,
हाँ हाँ,
और तपस्या के परिणाम स्वरूप पुत्र के रूप में आए,
दोनों ने तपस्या की तब वो प्रकट हुए। ठीक, अरे और एक और प्रश्न, दत्तात्रेय जी का स्वरूप जो हम यहाँ देखते हैं तीनों एक शरीर में, तीनों एक शरीर में, किंतु तीनों फिर अलग अलग है, जैसे जैसे आपने बताया,
तो उनकी इच्छा थी, तीनों बालक थे ना, तीनों को पुत्र में चाहते थे, एक वचन में बोल दिए थे कि आप मेरे पुत्र हो जाओ, एक वचन में, इसलिए तीनों एक रूप में हैं, दत्तात्रेय तीनों के हैं।
तो जब जब जन्म लिए तब ऐसे तीनों एक साथ थे, फिर बाद में अलग अलग हुए?
नहीं नहीं, वो अलग अलग हैं, वो अलग जो हैं वो हैं अपना
चंद्रमा,
चंद्रमा हैं वो अलग हैं, चंद्रमा इसमें नहीं है,
अच्छा वो अलग से पैदा,
और दुर्वासा जी अलग हैं,
वो अलग से हैं,
वो उनके अंश हैं, लेकिन वो तीनों लोग, ये तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय में हैं, और उनके अंश अलग हैं,
वो तीन दो अलग से। अरे
दत्तात्रेय आज भी हैं, दत्तात्रेय आज भी हैं, और महाराष्ट्र में ज्यादा पूजा होता है ना, कहीं एक मंदिर है उनका, आज भी है, अलग अलग युगों में आकर के उपदेश दिए हैं, एक गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं दत्तात्रेय।
प्रभु जी अरे ये दत्तात्रेय जी के साथ जो कुत्ते रहते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस?
ये उनको गुरु माने हैं, भगवान दत्तात्रेय उनको गुरु माने हैं, कुत्तों को, कुत्तों से सीखना चाहिए।
हरे कृष्ण,
क्या आप और कुछ है बताइए, सबको बताइए, ये सत्संग है बता सकते हैं, और कोई जानता होगा तो।
हरे कृष्णा, क्या जब त्रिदेव मां अनुसुईया के पास में परीक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने ये कहा कि माँ तुम नग्न अवस्था में हमें भिक्षा दो, या उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था?
देखिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, भागवत के तात्पर्य में कहे हैं, जब गोपियां स्नान कर रही थी, चीर चोरी का जो चीर घाट पर जब स्नान कर रही थी, सब वस्त्र रख करके और स्नान कर रही थी, नंगा स्नान कर रही थी पानी में, और वे भगवान को अपना पति के रूप में चाहती थी, कात्यायनी व्रत का पालन कर रही थी, तो अब व्रत पूरा हो गया था, तो भगवान पति के रूप में आए और उन गोपियों से कहे कि तुम लोग अपना वस्त्र चाहिए, तुम लोग आओ ले लो। वो लज्जा के मारे अपने लोअर पार्ट को अपने हाथ से सिपाही थी, भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, सरांगत हो जाओ, सब हाथ उठाओ, तब मैं वस्त्र दूंगा। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं वहां पर कि पत्नी अपने पति के सामने केवल नंगी रह सकती है, और किसी व्यक्ति के सामने नहीं। गोपियां चाहती थी कृष्ण मेरे पति हों, इसलिए उनका सती तो नष्ट नहीं हुआ। तो पत्नी पति के सामने नंगी हो तो सती है, दूसरे के सामने नंगी हो, जैसे आज तो सब लोग नंगे ही घूमते हैं, बहुत लोग क्या कपड़ा पहनते हैं आजकल, अमेरिका में देखो, लंदन में देखो, क्या भगवान जाने, खत्म हो गया, केवल नाम रह गया अस्तित्व, इंडिया में जानते हैं लोग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नंगी हो जाओ तो मतलब सत्य खत्म हो जाएगा ना।
मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि त्रिदेव ने जब उनसे परीक्षा लेने के लिए आए तो क्या वो ये चाहते थे कि, या भावना के रूप में वो ये कहना चाहते थे कि माँ तुम अपना सर्वस्व निछावर कर दो?
नहीं नहीं, वो पत्नी का बात मान कर आए थे उनका सतीत्व तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं।
धन्यवाद।
और इतने नीच नहीं थे इंद्र जैसा कि रूप बदल कर चले जाएं, वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए स्पष्ट। और दूसरे शब्दों में वो यह बतलाना चाहते थे कि हमारी पत्नी ने हमें भेजा इसलिए मैं आ गया हूं, और क्या। वो लस्ट के रूप में नहीं आए थे, लस्टी होकर के नहीं आए थे। जो इंद्र जो आया था गौतम ऋषि के अहल्या के पास, वह लस्टी होकर के आया था, इसलिए गौतम ऋषि का रूप धारण किया था। ये लोग लस्टी होकर के आए होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के अतृषि का रूप धारण कर सकते थे, लेकिन लस्टी होकर के नहीं आए थे, अपने पत्नियों के द्वारा प्रेरित होकर के आए थे। आप लोगों को एक बात कहता हूं, मैं कई एक बार कह चुका हूं, अकबर बिरबल कहानी है कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो पत्नी का बात नहीं मानता है। आप भी मानते हो ना, है? वो मानना ही पड़ता है। एक बार अकबर बिरबल ऐसे बैठे थे तो बिरबल ने, अकबर ने कहा कि बिरबल यार कोई तो ऐसा आदमी होगा जो अपने पत्नी का बात नहीं मानता होगा। बिरबल ने कहा कि नहीं महाराज, संसार में सब लोग पत्नी का बात मानते हैं, जो घर में शांति चाहिए तो पत्नी का बात मानना ही पड़ेगा। आजकल शांति का बात नहीं है, बिना शांति का ही बात मानना पड़ेगा। अकबर ने कहा नहीं नहीं, कोई तो जरूर ऐसा एक होगा जो पत्नी का बात नहीं मानता होगा। तो एक दिन बड़ी सभा बुलाई गई और उसमें दो लाइन लगाया गया, एक पर लिखा गया जो अपने पत्नी का बात मानता है वो इस लाइन में आए, और जो पत्नी का बात नहीं मानता है इस लाइन में। सब लोग उस लाइन में जा रहे थे, एक बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, वो उस लाइन में आ गया जिस पर लिखा था जो अपने पति का बात नहीं मानता है। तो बीरबल, अकबर बड़ा खुश हो गया, कहा देखो बीरबल, एक आदमी तो कम से कम है ना जो पत्नी का बात नहीं मानता है। तब बीरबल ने कहा नहीं महाराज, कुछ गड़बड़ जरूर है, उसको बुलाकर पूछा जाए। उसको बुलाकर पूछा गया, क्या भाई तुम उस लाइन में क्यों गए, सब लोग उस लाइन में जा रहे थे। कहा कि महाराज क्या करूं, जब मैं आ रहा था ना तो मेरी पत्नी ने कहा जहां ज्यादा भीड़ भड़का हो उधर नहीं जाना, जहां खाली उधर चले जाना। पत्नी की बात मानो ना जी, है? पत्नी की बात मानो, ठीक है। ब्रह्मचारी लोगों के लिए कुछ कोई जरूरी नहीं है, है? नहीं तो सुन लो, सबको मानना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। गृहस्थों से अकेला में जाकर पूछो कितने रोते हैं वो लोग, बेचारे आंसू भी नहीं बहा पाते हैं गृहस्थ लोग। ना जी एक्सपीरियंस है ना, अपना तो है भाई, आंसू भी सूख जाता है। एनीवे, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय।